ओम शांति। मुरली है 15th नवंबर 1999। चाहे सतयुग त्रेता में श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है, चाहे द्वापर कलयुग में पूज्य पद पाना है, लेकिन दोनों का जमा इस संगम पर करना है। इस हिसाब से सोचो कि संगम समय की जीवन के छोटे से जन्म के संकल्प समय श्वास कितने अमूल्य है। इसमें अलबेले नहीं बनना, जैसा आया वैसा दिन बीत गया। दिन बीता नहीं लेकिन एक दिन में बहुत बहुत गवाया। जब भी कोई फालतू संकल्प फालतू समय जाता है तो ऐसे नहीं समझो, चलो 5 मिनट गया, बचाओ। बाबा कह रहे बचाओ। तो चाहे सतयुग त्रेता में श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है, चाहे द्वापर कलयुग में उच्च पद पाना है, लेकिन दोनों का जमा संगम पर करना है। इस हिसाब से सोचो तो संगम समय का कि जीवन के छोटे से जन्म के संकल्प समय श्वास कितने अमूल्य है। इसमें अलबेले नहीं बनना, जैसा आया वैसा दिन बीत गया। दिन बीता नहीं लेकिन एक दिन में बहुत बहुत गवाया। जब भी कोई फालतू संकल्प फालतू समय जाता है तो ऐसे नहीं समझो, चलो 5 मिनट गया, बचाओ। तो बाबा समय का महत्व बता रहे हैं, एक है समय और दूसरा है संकल्प, एक है सेकंड और एक है श्वास। तो एक एक संकल्प का महत्व है। क्यों? क्योंकि संकल्प ही क्या बनता है?
संस्कार,
बोल, कर्म और संस्कार। संकल्प बीज है। इसके लिए बाबा ने अभी भी एक मुरली चलाई थी ना शिवरात्रि की, जिसमें क्या कहा था, संकल्पों की क्या करो, इकोनॉमी, इकोनॉमी का अवतार। जैसे शिवरात्रि पर शिव अवतरण होता है, वैसे संगम युग पर क्या करो, इकोनॉमी का अवतार। जिसमें इकोनॉमी संकल्पों में, व्यर्थ तरफ ना जाए, वेस्ट तरफ ना जाए, निगेटिव तरफ ना जाए। जितने हमारे संकल्प कम होंगे, जितने हमारे संकल्प समर्थ होंगे, शक्तिशाली होंगे, उतने ही हम शक्तिशाली बनेंगे। एक एक संकल्प को शक्तिशाली बनाना है, क्योंकि ये जन्म कैसा है, बाबा कह रहे छोटा सा जन्म, दिव्य जन्म, अलौकिक जन्म, हीरे तुल्य जमन जन्म। तो ऐसा ये जन्म है। बाबा ने 12 तारीख की अव्यक्त वाणी में एक प्रश्न पूछा था, अपने आप को क्या समझते हो, संगम योगी समझते हो? है छोटा सा प्रश्न, पर प्रश्न में बहुत गुह्यता है। स्वयं को कलयुगी ना समझ क्या समझना है, संगम योगी समझना, अर्थात नए युग में हमने पदार्पण किया है। बहुत जन्म नहीं है ये नया जन्म है, नया युग है, डायमंड युग है। सारे चक्र का रहस्य, सारे चक्र का ज्ञान यहाँ मिल रहा है, परमात्मा दे रहा है। इस देन को कम ना समझना, मिलन यहाँ हो रहा है, इस मिलन को कम ना समझना। जिन्हें ये भाग्य प्राप्त हुआ है उन्हें क्या कहा जाता है, महान योगी कहलाते हैं, महान योगी की महान जीवन वाले।
बारह तारीख में, सात तारीख में,
बारह, हाँ सात तारीख,
बारह बोल
तो महान योगी कहलाते हैं वो। तो इस युग का महत्व, इस जीवन का महत्व, इस जन्म का महत्व, भाग्य का महत्व, प्राप्ति का महत्व, मिलन का महत्व बुद्धि में इमर्ज हो। कौन मिला है, क्या मिला है, कौन सा भाग्य है, ये सारा ही बुद्धि में इमर्ज हो। दिन भर की दिनचर्या, दिन भर की जो भी बातें होती है, ये सब चीजों को भुलाती है, क्योंकि वर्तमान देखने में आता है। तीनों ही कालों को देखना, खड़े रहकर पीछे साक्षी होकर सारा कुछ, इससे ही स्थिति श्रेष्ठ रह सकती है। तो छोटा सा जन्म है जिसमें एक एक संकल्प और एक एक श्वास, श्वास का अर्थ यहाँ है सेकंड या समय, समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। फालतू संकल्प, फालतू समय चला जाता है, बैठे हैं और चर्चाएं चालू है संसार की, यहाँ ये हुआ, वहां वो हुआ, ना हमको कुछ फायदा ना उसको कुछ फायदा, जगह भी बना रखी है चर्चाओं की। जगहें भी बना रखी है, पॉइंट्स मधुबन में भी बना रखी है चर्चा करने के लिए। तो हमारा समय व्यर्थ बातों में ना जाए, व्यर्थ डिस्कशन में ना जाए, परचिंतन जिसको बाबा कहते हैं, जरमोई झगमोई की बातें जिसको कहते हैं, इन सब में हमारा इंटरेस्ट ना हो। एक होता है इंटरेस्ट, रस, रस प्राप्त होता है बातों से, क्योंकि ये बातें सुनकर थोड़ा सुरक्षा का अनुभव भी होता है कि हम अकेले नहीं है, बहुत है, बहुतों के साथ बहुत कुछ हो रहा है, परेशानी केवल हमें भी नहीं, इनकी तो हमसे ज्यादा है, ये बात थोड़ा सा हथत देती है, हम फिर भी ठीक है, हमारी थोड़ी कम ग्लानियां, इनकी तो ज्यादा हो रही है। परंतु ये जो भी बातें हैं, ये विनाशी आधार है। जितने संबंध है संसार के, सारे विनाशी संबंध है। मनुष्य तीन चीजों से सीखता है, लर्निंग की तीन प्रक्रिया है, एक है, और जैसे जैसे स्टेप्स नीचे नीचे होती है, थोड़ा थोड़ा दुख अनुभव होता है। सबसे फर्स्ट स्टेप है लर्निंग की, सुनना, सुन लिया और स्वीकार कर लिया, समा लिया, बस और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, हो गया, भगवान ने कह दिया काम महाशत्रु है, सुन लिया, अनुभव की जरूरत नहीं, मम्मा बाबा या मम्मा, सुन लिया, धारण कर लिया, हो गया खत्म, अब और झंझट में जाने की जरूरत ही नहीं है, सुन लिया, यही परम सत्य है और यही सब कुछ है। तो सुनना सबसे पहली विधि है, सुन लिया, भगवान ने ये कह दिया है और यही परम सत्य है, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, यही सत्य है, उसको संपूर्ण रीति से जीवन में धारण कर लिया, सुना और धारण कर लिया। तो सुनना एक विधि है, हियरिंग। दूसरा है फिर सुना, परंतु इतना असर नहीं हुआ। दूसरी विधि है देखना, देखा दूसरों के साथ क्या क्या हो गया, इन्होंने सुना था पर किया नहीं, तो इनके साथ ये हुआ, अब ये देखकर सीखा। जैसे कोई शराबी है, उसके दो बच्चे हैं, एक बच्चा कहता है मैं बहुत पीता हूं, क्यों, क्योंकि पिताजी पीते हैं। दूसरा कहता है मैं नहीं पीता, क्योंकि वो पीता है। दोनों ने सीखा, एक ने सीखा वो पीता है करके मैं पीता हूं, दूसरे ने सीखा वो पीता है करके मैं नहीं पीता, क्योंकि उसका हाल देखा क्या है, ये भी सीखना है। वो पहला बेटा है उसकी, तो अभी उसकी हम चर्चा नहीं कर रहे, हम अभी चर्चा कर रहे हैं देख कर भगवान के महावाक्य है, काम महाशत्रु है। सुना पर इतना विश्वास नहीं हुआ, फिर देखा दूसरों का क्या हाल हुआ, दूसरे गिरे, स्थिति नहीं बन पाई, फिर भी नहीं सीखा। तो ये एक दूसरी विधि है सीखने की, देख कर सीखना। तीसरी एक विधि है अनुभव। भगवान ने कहा सर्व संबंध मुझसे जोड़ो, हमने कहा ठीक है पर ये भी तो निभाने हैं, ब्राह्मण बनने के बाद संबंध जोड़े, नए संबंध, किसी को भाई, किसी को बहन, किसी को माँ, किसी को साजन, किसी को सजनी बनाए, किसी को मित्र, फास्ट फ्रेंड। ज्ञान की बात चल रही है, लौकिक की बात नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो ब्रह्मचारी है। उन्होंने अनेक संबंध बनाए, अलौकिक संबंध, जिसको ऊपर से नाम सेवा का है परंतु संबंध बनाए। भगवान ने कहा था संबंध मुझसे जोड़ो, पहली विधि थी सुन लिया, स्वीकार कर लिया और यही सत्य है, बनाने की आवश्यकता ही नहीं। भगवान ने कहा आग में हाथ नहीं डालना, बस सुन लिया, बिना क्या होता है वो कुछ नहीं, सुन लिया, स्वीकार कर लिया और सेफ। दूसरा, दूसरों को देखा, दूसरों ने हाथ डाला और वो जल गए, वो कईयों ने इससे सीख लिया। तीसरे जो है वो पहला भी गया, दूसरा भी गया, अभी तीसरा पता है, परंतु शायद कोई कमजोरी के वश, माया के वश, वायुमंडल के वश हाथ डाला, हाथ जला, फिर सीखा। भगवान ने कहा संबंध नहीं जोड़ो, संबंध जोड़े, संबंध बनाए। एक एक संबंध से दुख की अनुभूति हुई, फिर भी छोड़ना नहीं चाहते, मन कहता है चलने दो थोड़ा और समय, अच्छा लगता है। सारे टूट गए, सब में दुख की और फ्रस्ट्रेशन की अनुभूति हुई, उसके बाद में सीखा। एक्सपीरियंस तीन विधि है जिससे व्यक्ति सीखता है। अपने आप को देखो, मैं किस कैटेगरी में हूं, सुन लिया और सीख लिया, देख लिया फिर सीखा, या अनुभव किया फिर सीखा। कोई एक बहुत बड़ा उद्योगपति रहता है, बहुत बड़ा, उसको एक पत्रकार इंटरव्यू लेने आता है। पत्रकार होते हैं ना बहुत खतरनाक होते हैं, छोड़ते नहीं है जब तक पूरा उत्तर ना मिल जाए, घुमा फिरा के प्रश्न पूछते हैं, कहते हैं कि बताओ कौन सा वो सीक्रेट, क्या है वो कि जिससे आप इतने बड़े हो गए, ऐसा क्या आपने किया जीवन का, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, इस तरह के प्रश्न बहुत पूछते हैं। वो कहते हैं ओनली वन वर्ड, नहीं टू वर्ड्स, केवल दो शब्द, रॉन्ग डिसीजन, राइट डिसीजन। तो पत्रकार संतुष्ट थोड़ी होते हैं ऐसे छोटे मोटे उत्तर से, राइट डिसीजन ये सीक्रेट है उसके जीवन के सक्सेस का। देख राइट डिसीजन तो है पर उसका भी क्या, कैसे राइट डिसीजन भी कैसे लिया आपने। वो कहता है ओनली वन वर्ड, केवल एक ही शब्द, एक्सपीरियंस, अनुभव। तो पत्रकार कहते अरे वो तो ठीक है राइट डिसीजन ले लिए और एक्सपीरियंस एक ही शब्द है, पर उसका भी आधार क्या है, वो भी आपने कैसे लिए। वो कहते हैं ओनली टू वर्ड्स, रॉन्ग डिसीजंस। अनुभवी कैसे बने, गलत निर्णय लिए और अनुभव बने, अनुभव बनने के बाद क्या किया, राइट डिसीजंस लिया, राइट डिसीजंस लेने के बाद फिर सक्सेसफुल हुए। तो व्यक्ति कम से कम अनुभव से तो सीखे, ये तीसरी स्टेज है लर्निंग की, पहली तो है, पर एक बात है जो अनुभव से सीख जाता है वो थोड़े ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। हाथ जला था वो याद है ना। एक चौथी भी विधि है सिखाने की, दंड, दंड, दंडा, दंड प्राप्त होने के बाद सीखना, वो फिर समय सिखाता है। तुम सीखे नहीं थे ना, अभी भोगो और फिर सीखो। तो हमारा समय भगवान ने कह दिया है कि समय बहुत अमूल्य है, 5 मिनट भी व्यर्थ नहीं जाने चाहिए, बचाओ। ये परमात्मा महावाक्य हमने सबने सुना, ठीक है, पहलों ने सुन लिया, तुरंत धारण कर लिया, दूसरों ने सुना तो, परंतु ठीक है, फिर बाकियों का क्या हाल हुआ देखा, देखना सींग कि दूसरों का हाल बहुत बुरा हुआ जिन्होंने समय बर्बाद किया, और तीसरा खुद समय बर्बाद किया और फिर खुद सीखा कि अभी नहीं करना चाहिए। ये फिर भी तीनों भी ठीक है, इसके नीचे भी कुछ कैटेगरीज होगी जो अभी तक सोच रहे हम ही सही है, हम ही ठीक है जो कुछ कर रहे हैं। आगे की मुरली है 31 दिसंबर 1999। दूसरा कारण, पहला कारण पढ़ लेना मुरली से, दूसरा कारण अलबेलापन भिन्न भिन्न रूप में देखा। कोई कोई में बहुत रॉयल रूप का भी अलबेलापन देखा। ये पूरी जो सीरीज है आलस्य अलबेलापन, आलस्य अर्थात जिसको बाबा लेजीनेस कहते हैं, अलबेलापन अर्थात केयरलेसनेस। कहीं कहीं दो शब्दों को बाबा ने अलग अलग रखा है, कई को कई कई जगह पर समानार्थी रूप से प्रयोग किया है, कहीं पर एकदम सूक्ष्म रेखा खींची है दोनों के बीच में कि ये जो है ये अलबेलापन है, ये जो है ये आलस्य है। कहीं आलस्य को ज्यादा बताया हुआ है, कहीं अलबेलापन को ज्यादा बताया हुआ है। तो पूरी जो सीरीज है ये श्रृंखला, इसमें अलग अलग रीति से दो शब्दों का प्रयोग है। कोई कोई में रॉयल रूप का भी अलबेलापन है। एक शब्द अलबेलापन का कारण है, कौन सा वो शब्द है, वन वर्ड। बाबा के भी इंटरव्यू लिए, बाबा बताओ क्या कारण, तो बाबा कह रहे हैं ओनली वन वर्ड। तो एक शब्द तो नहीं है, तीन शब्द है, सब चलता है, ये कारण है। क्या सब चलता है, सब चलता है एटीट्यूड जिसको कहते हैं इंग्लिश में, क्योंकि संसार में तो हरेक के हर कर्म को कोई देखता नहीं, देख नहीं सकता। साकार ब्रह्मा भी साकार में नहीं देख सके, लेकिन अब अव्यक्त रूप में अगर चाहे तो किसी के भी हर कर्म को देख सकते हैं, देख सकते हैं ना माता जी, ब्रह्मा बाबा है कि नहीं, मधुबन में दिखते हैं ना, कईयों को दिखते हैं अभी भी यहां वहां, है ना, है। जो गाया हुआ है परमात्मा की कितने आंखें है, हजार आंखें, लाखों आंखें, और कान लाखों कान है। भगवान सब कुछ देख रहा है और सब कुछ सुन रहा है। He that planted the eye, shall he not see? He that planted the ear, shall he not hear? जिसने आंख दी है तुमको, क्या वही नहीं देखेगा? जिसने कान दिया है, प्लांट किया, जैसे झाड़ का रोपण करते हैं ना, वैसे तुम्हारे देह में जिसने कान कानों का रोपण किया है, क्या वो नहीं देखेगा, सुनेगा? ऐसा बाइबल में लिखा है। तो परमात्मा की क्या गायन है, हजारों आंखें हैं, लाखों आंखें हैं, लाखों कान है। वह अभी निराकार और अव्यक्त ब्रह्मा दोनों साथ साथ, वह अभी निराकार और अव्यक्त ब्रह्मा दोनों साथ साथ देख सकते हैं। कोई कितना भी छिपाए, छिपाते भी रॉयल्टी से, साधारण नहीं। तो अलबेलापन एक मोटा रूप है, एक महीन रूप है, शब्द दोनों में एक ही है, सब चलता है। देख लिया है क्या होता है, कुछ नहीं होता। आज्ञा की उल्लंघन, आज्ञा का उल्लंघन करो, पहले डर रहता है, पर देखा कि दूसरे भी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं तो क्या होता है, फिर थोड़ी हिम्मत बढ़ जाती है, क्या करने की, बड़ी आज्ञाओं की उल्लंघन करने की, गलती करने की। चोर सीधा बड़ी चोरी थोड़ी करता है, हिम्मत कैसे आती है चोर में, पहले छोटी मोटी चोरियां करता है, जेब वगैरह काटता है, फिर देखता है कुछ नहीं हुआ, फिर और थोड़ी बड़ी चोरी करता है, और बड़ी चोरी करता है, अंदर का विवेक खून, फिर कुछ नहीं होता है। फिर एक आधे बार पुलिस पहली बार पकड़ती है, जेल में जाता है, थोड़ा दुख होता है, दूसरी बार थोड़ा कम दुख होता है, फिर बार बार जाता है तो उधर ही अच्छा लगता है। फिर एक जो लोग जेल वर्ड्स होते हैं ना, उन पर भी साइकोलॉजिस्ट ने स्टडी की है पाया है कि वो जब जेल उनका जेल के रहने का पीरियड और जेल के बाहर, तो पाया गया है वो जेल में ज्यादा सुखी रहते हैं, क्योंकि वहां थोड़े निश्चिंत हो जाते हैं बार बार जाने के बाद। एक ही जगह खाना भी मिल जाता है, नौकरी की कोई कुछ इधर उधर भागो नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ वहां। इसके लिए वो जैसे ही बाहर निकलते हैं फिर प्रबंध करते कैसे अंदर जाए। वहां कोई पुलिस का भी डर नहीं, कोई पकड़ेगा, कोई घर की चिंता नहीं, खाने की चिंता नहीं, पीने की चिंता नहीं, नौकरी पे जाने की चिंता नहीं, उनका जो प्रोफेशन है जेब काटना वगैरह, तो उधर ज्यादा सुखी रहते हैं अंदर। इसके लिए उन्हें उनको जेल बर्ड्स कहा जाता है। बाबा भी कभी कभी याद करते हैं जेल बर्ड्स को। तो यहाँ पर भी एक महीन रूप वो है, सब चलता है, देख लिया है क्या होता है, कुछ नहीं होता, अभी तो चला लो फिर देखा जाएगा। तो ये जो है एक संकल्प है, ये संकल्प के शब्द हरेक के अपने अपने हो सकते हैं, जरूरी नहीं यही शब्द होंगे, शब्दों में बदल हो सकता है, भाव एक ही रहेगा, अलग अलग शब्दों में अपने मन को समझाते हैं कि ऐसा है और फिर वो संस्कार बनता है। अब ये अलबेलेपन के संकल्प है, बाप दादा चाहे तो सभी को सुना भी सकते हैं ये संकल्प। आपके मन में जो संकल्प चल रहे हैं वो बाप दादा चाहे तो सुना सकते हैं, लेकिन लेकिन क्या
बच्चों का थोड़ा रख लेते हैं।
हाँ, लेकिन आप लोग कहते हो ना कि थोड़ा थोड़ी लाजपत रख दो, तो बाप दादा भी लाजपत रख देते हैं, लेकिन इज्जत आबरू, लेकिन यह अलबेलापन पुरुषार्थ को तीव्र नहीं बना सकता, पास विद ऑनर नहीं बना सकता। जैसे स्वयं सोचते हो ना सब चलता है, तो रिजल्ट में भी चल जाएंगे लेकिन उड़ेंगे नहीं। तो सुना क्या, दो बातें देखी, ये दूसरी बात थी, पहली मुरली में है। परिवर्तन में किसी न किसी रूप से हरेक में अलग अलग रूप से अलबेलापन है, परिवर्तन में किसी ना किसी रूप से हरेक में अलग अलग रूप से अलबेलापन है। अलबेलेपन भी अलग अलग रूप से आता है, उसके भी भिन्न भिन्न रूप है। तो बाप दादा उस समय मुस्कुराते हैं, बच्चे कहते हैं देख लेंगे क्या होता है, तो बाप दादा भी कहते हैं, बच्चे कहते हैं तो बाप दादा उस समय मुस्कुराते। बाप का ये मुस्कुराना इतना आसान नहीं है, बहुत ही खतरनाक मुस्कुराना है। जब बाबा कहते हैं ना कि बाबा मुस्कुराते हैं, तो थोड़ा सा पीछे हटना चाहिए। जब ऐसे समय पर बाबा मुस्कुराते हैं तो थोड़ा उसमें धर्मराज का मुस्कुरा, वो मुस्कुराहट है या क्या है। तो बाप दादा उस समय मुस्कुराते हैं, बच्चे कहते हैं देख लेंगे क्या होता है, तो बाबा भी कहते हैं देख लेना क्या होता है। तो मुरली है 30/12/99। दूसरा कारण अलबेलापन 99, भिन्न भिन्न रूप से देखा। कोई कोई में बहुत रॉयल रूप का भी अलबेलापन देखा। एक शब्द अलबेलापन का कारण है, सब चलता है, क्योंकि साकार में तो हरेक के हर कर्म की को कोई देखने देख नहीं सकता। साकार ब्रह्मा भी साकार में नहीं देख सके, लेकिन अब अव्यक्त रूप में अगर चाहे तो किसी के भी हर कर्म को देख सकते है। जो गाया हुआ है कि परमात्मा की हजार आंखें, लाखों आंखें है, लाखों कान है, उसके कान लाखों है, फिर हम जो उससे कहते हैं वो क्यों नहीं सुनता, कि सुनता है मंजू भाई, सुनता है क्या? भक्ति में तो बड़ा गायन है कि वो सब सुनता है, यहाँ तो अमृत वेला बिल्कुल धरना लेके बैठते हैं उसके सामने, फिर भी नहीं सुनता है कई बार, क्यों? गला काट देंगे भक्ति में, यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही। तो वो सुनता है नहीं सुनता है कुमुद बेन? सुनता है, लाखों कान है। कभी कभी प्रार्थनाएं जो होती है ना, जैसे दिखाया है वो रामकृष्ण परमहंस से कहानी सुनाते थे कि एक भिखारी एक साधु संगीत भजन गा रहा है और भिक्षा मांग रहा है, भजन गा रहा है और भिक्षा मांग रहा है। जो गृहिणी है घर की, जो वो पात्र लेकर थोड़ा अंदर खड़ी है पर निकल नहीं रही है बाहर, वो मांग रहा है कि भिक्षाम देही, और अपना संगीत गा रहा है, मांग रहा है। तो जो सेठ जी होता है वो कहता है, अरे तुम उसको देते क्यों नहीं, दे दो ना, वो कब से बैठ खड़ा है, तुम ऐसा भी नहीं कि तुमको नहीं देना है, तुमको देना है, हाथ में पात्र है। वो कहता है कि मैं अगर दे दूंगी तो वो चला जाएगा। मुझे उसका संगीत सुनना भी कितना अच्छा है, कितना मधुर संगीत है उसका। प्रार्थना है तो हो रही है, तो भगवान को प्रार्थना सुनना भी तो कभी कभी अच्छा लगता है। तो वो कभी कभी द ग्रेटेस्ट प्रेयर्स आर दोज विच आर अनआंसर्ड। अनआंसर्ड प्रेयर आर द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड। अनआंसर्ड, अनुत्तरित जो प्रार्थना है, तो भगवान को भी कभी कभी लगता है चलो इनका योग लग रहा है, होने दो, और अच्छा योग होने दो। वैसे तो करते नहीं, अच्छी परिस्थिति आ गई जीवन में, अभी उसी बहाने योग तो कर रहे हैं, चलो योग करना चाहिए, पर मांग रहे, पर मुझे से तो मांग रहे हैं, ठीक है, वो भी तो योग ही है एक रीति से, तो क्यों पूरा करें, करने दो। लियो टॉल्स्टॉय ने किताब लिखी है गॉड नोज द ट्रुथ बट ही वेट्स, बहुत प्रसिद्ध नॉवेल है ये, जिस पर श्याम बेनेगल ने कुछ हिंदी धारावाहिक भी बनाए हैं भारत में। गॉड नोज द ट्रुथ बट ही वेट्स, जिसमें दिखाया एक मर्चेंट है, एस्किन्स नो ऐसा उसका नाम दिखाया, एक व्यापारी है, वो बड़ा ही सीधा साधा भोला भाला व्यापारी दिखाया है रूस में। एक दिन उसकी पत्नी को स्वप्न दिखता है कि वो उस दिन काम पे ना जाए, फिर भी वो जाता है, नहीं सुनता है अपनी पत्नी को, जाता है काम पर। और फिर एक सराह होता है, एक दूसरा व्यापारी उसे मिलता है, उसके साथ में वो जाता है, दोनों उस इन सराय में रात भर रुकते हैं। सुबह सुबह ये जल्दी उठकर निकल जाता है, निकल जाता है तो पुलिस उसे पकड़ लेते हैं, कहते हैं तुमने एक दूसरे व्यापारी का खून किया। बोलते हैं खून, मैंने तो किया ही नहीं। वो बोलते हैं बैग खोलो, बैग खोलो, तो उसमें खून से लथपथ एक चाकू और सब कुछ मिल जाता है, और वो साबित हो जाता है कि उसी ने खून किया, अभी उसे तो पता भी नहीं, और उसे जेल हो जाती है 26 साल जेल में, दिखाया 26 साल। और उसका स्वभाव बड़ा अच्छा रहता है, वो जेल में भी सबका प्रिय बन जाता है, जैसे प्रवचन भी करने लगता है जो वहां के जेलर, और सबका प्रिय बन जाता है। तो दिखाया है उस जेल में कई सालों के बाद, 26 वर्ष जब होने को होते हैं, एक दूसरा कैदी आता है, वो वही कैदी होता है जिसने खून किया था। तो दिखाया है उससे बातचीत और वो सब के दौरान, ये जो दूसरा एस्किनो ऐसा कुछ नाम बताया उसका, उसको पता चल जाता है कि यही है कि जिसने खून किया था। और फिर एक दिन ऐसा होता है कि ये जो नया कैदी होता है एक सुरंग खोदता है खुद को छुड़ाने के लिए, पर पकड़ा जाता है, किसी रीति से पकड़ा जाता है, वो सुरंग पकड़ी जाती है कि, और फिर जांच चलती कि किसने खोदी वो सुरंग। पर ये जो व्यक्ति होता है, जो पहला व्यापारी, उसको पता चल जाता है इसी ने खोदी है, पर वो उसको किसी को बताता नहीं है, और वो कहता है कि मुझे पता है ये तुमने ही खोदी है, और मुझे ये भी पता है कि तुमने ही वो खून किया था, पर मैं तुम्हें माफ करता हूं। तो यहाँ मतलब इस कहानी को रूस में इतनी बार बार सुनाई जाती है बचपन से बच्चों को, मैंने कैसे माफ करना और भगवान को कैसे सब पता है। उसका स्टोरी का नाम ये गॉड नोज द ट्रुथ बट ही वेट्स। तो दिखाया फिर वो जो कैदी होता है दूसरा, उसको बहुत पश्चाताप होता है पहली बार जीवन में, और वो अपने सारे गुनाह कबूल करता है कि ये मैंने ही किया था। और फिर जो वहां की सरकार है वो ये निर्णय लेती है कि जो पहला व्यापारी है उसको छोड़ दिया जाए। तो जब वो पहुंचते हैं उसको छोड़ने, उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। ट्रेजिडी जैसा है कि वो दम तोड़ देता है तब तक, परंतु वो बड़ी ही, एक शब्द उसमें लिखा है, बट ही लिव्स द मॉर्टल कॉइल इन ग्रेट पीस, बहुत ही शांति से शरीर को छोड़ देता है। तो 26 साल जेल में उस अपराध के लिए जो उसने किया ही नहीं। स्टोरी का नाम है गॉड नोज द ट्रुथ बट ही वेट्स। तो भगवान सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है। ये हमारे ही कुछ शायद हिसाब किताब है, बहुत सारी चीजें हैं कुछ पूर्व जन्म की जो हमको पता नहीं है हमने क्या क्या कर रखा है, और एक रीति से अच्छा भी है कि नहीं पता है। इसके लिए हम भोग सकते हैं, अगर हर एक की स्मृति दिलाई जाए कि तुमने ये किया, ये किया, ये इसकी ये सजा, इसकी ये सजा, तो दिन रात सजा तो ठीक है, वो दुखी हो जाएंगे सोच करके हमने ये भी किया। ओम शांति।